وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में जो कि तफसीर क्लास कहलाती है दीन एसेंशियल्स प्रोग्राम में और आलिमात प्रोग्राम के अंदर ये तरबिया क्लास कहलाती है एक ही क्लास और इसमें एक ही मजमून मतन हम पढ़ रहे हैं जो कि इस वक्त सूरतुल अंबिया की तफसीर है मारफुल कुरान की जिल्द नंबर 6 से। उसके अंदर ये आया जो भी तलावत की गई उनकी तफसीर हम पढ़ रहे थे और इसमें हम पेज नंबर 213 पर पहुंचे थे और हम यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने मोजज़ात दिए थे उनका जिक्र पढ़ रहे थे। तो रीहुन आसिफन आसिफतन का तो पढ़ लिया था कि अल्लाह ताला ने हवा को मुसख़र कर दिया था सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए यानी उनके हुक्मों के लिए। वो जैसे हुक्म देते थे हवा जो है वो वैसे उनके तख्त को लेकर के उड़ती थी और जहां ले जाना होता था वहां ले जाती थी फिर वहां से वापस लेकर के आ जाती थी। इस हवा की सिफात पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तस्खीर जिन्नात व शयातीन। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हवा के जिक्र के बाद फिर वो मिन शयातीन मै यबूसून लहू। ठीक है, तो शयातीन यानी जिन्नात का जिक्र भी किया। उसके तहत हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वमिन الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين। यानी हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुसख़र कर दिया शयातीन। शयातीन जिन में से जिन में सॉरी वो वाला जिन नहीं है बल्कि जिन में से ऐसे लोगों को जो दरियाओं में गौता लगाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जवाहरात निकाल कर लाते थे। ठीक है, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो उनको हुक्म देते थे और वो हुक्म के मुताबिक जो भी काम करना होता था वो करते थे जिनमें से एक काम ये भी होता था कि समंदरों के अंदर गौता लगाओ या दरियाओं में गौता लगाओ तो वहां पर जो जो नेचुरल पर्ल्स फॉर्म हो जाते हैं पूरा एक प्रोसेस होता है एक नेचुरल प्रोसेस के वो जो एक 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 जानवर एक मखलूक रहती है तो वो जो है वो स्लोली स्लोली जो है वो बाकायदा एक मोती में तब्दील हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त शाइनिंग किस्म का वो मोती होता है जिनको ओरिजिनल पर्ल्स कहते हैं। आप लोग ज्यादा कौन वाकिफ है इससे, तो उनको वो निकाल करके लाते थे और इसके अलावा दूसरे काम भी करते थे जिनमें से बाज का जिक्र दूसरी आयात में आया है जैसे कि हैकल सुलेमानी की कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो कि बैतुल मुकद्दस में पूरा एक एक मस्जिद बनाई थी सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ऊपर वो भी इन इन जिनों ने ही बनाई थी जिनमें से अक्सर जो है वो शयातीन थे। ठीक है, अब ये शयातीन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल होता है जिनों के लिए तो उसके बारे में लिख रहे हैं कि शयातीन ये वो आग के बने हुए अजसाम लतीफा हैं जो अक्लो शऊर रखते हैं और इंसान की तरह अहकाम शरा के मुकल्लफ हैं। ये अल्लाह ताला की मखलूक में से दो मखलूक ऐसी हैं जिनको के अल्लाह ताला ने अहकाम शरिया का मुकल्लफ बनाया यानी इनके ऊपर ये जिम्मेदारी रखी ये बोझ रखा कि उन्होंने अल्लाह के हुक्मों को मानना है लेकिन इख्तियार दे दिया
कि वो मानेंगे तो यानी वो अपनी मर्जी से मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। अगर मानेंगे तो उनको सवाब मिलेगा और अगर नहीं मानेंगे उनको तो उनको अजाब मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी जो मखलूक है ना अल्लाह ताला की, वो सिर्फ दो हैं, एक है इंसान और दूसरी है जिन। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला की मखलूकात कौन कौन सी हैं? फरिश्ते। फरिश्तों के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो माने या ना माने, उन्होंने मानना ही है, दूसरा उनके पास चारा ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं उनके पास। उसी तरीके से जो दरख्त हैं नबातात के, जो पूरा का पूरा एक एक किंगडम है अल्लाह ताला की बनाई हुई, तो नबातात के पास भी यानी प्लांट किंगडम के पास भी कोई ऑप्शन नहीं। उसी तरीके से जो हैवानात हैं उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके अलावा आखिर में क्या रह जाते हैं? जमादात। जमादात के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्रिटी मच इन पांच अकसाम में ना अल्लाह ताला की ये जो हिल मखलूक को तकसीम किया जाता है। वैसे तो आसमान भी अल्लाह ताला की मखलूक है, ठीक है ना, और अल्लाह ताला का जो अर्श है वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है, ठीक है। लेकिन उमूमी तौर पर जो जो हम अपने आस पास रहने वाली मखलूकात को देखते हैं ना, तो उनमें यही फरिश्ते वो भी हमारे आस पास रहते हैं, राइट, हमारे कंधों के ऊपर भी रहते हैं और आना जाना भी रहता है, घर के अंदर भी रहते हैं, राइट, तो फरिश्ते भी आस पास रहने वाले मखलूक हुए ना। उसी तरह जिन भी आस पास रहने वाली मखलूक हुई, और नबातात और जमादात और हैवानात ये भी आस पास रहने वाली मखलूक हुई, ठीक है। दस्तरखान के ऊपर भी रहती हैं माशाल्लाह, नबातात में से भी खाते हैं और हैवानात में से भी खाते हैं, और जमादात तो चारों तरफ मौजूद हैं। ये जो आपके सामने कंप्यूटर है, जो फोन है, ये भी जमादात में से है, ठीक है, टेबल कुर्सी दीवार छत ये सब कुछ जमादात में से है। अर्श जो है ये भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन वो हमारे आस पास नहीं रहती। अर्श तो सबसे बड़ी मखलूक और सबसे ऊंची, कुर्सी भी अल्लाह ताला की मखलूक है लेकिन वो भी अर्श के साथ रहती है, और आसमान तो आसमान भी जाहिर है हमसे बहुत दूर है। बहरहाल इन तमाम मखलूकात में से जो अल्लाह ताला ने जिनको शऊर इस लेवल का दिया है कि इख्तियार भी है उनके पास, अकली शऊर इस लेवल का कि उनके पास इख्तियार भी है कि माने या ना माने, वो सिर्फ इंसान और जिन है। इसी वजह से उनको ज़विल उकूल कहते हैं, अकल वाले, ज़विल उकूल, ठीक है। तो अकल दे करके अल्लाह ताला ने उनको फिर अहकाम शरईया का मुकल्लफ बना दिया, ठीक है। इस नौ के लिए अब आगे लिखते हैं कि इस नौ यानी ये जो अजसाम लतीफा, अच्छा अजसाम लतीफा का मतलब क्या कि इनके जो जिस्म है ना वो इंतहाई लतीफ हैं, यानी इंतहाई डेलिकेट और इंतहाई बारीक, और ऐसे हैं कि जिनको के हम, अच्छा यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े बड़े वो छुईमुई किस्म की चीज है, सेंसिटिव किस्म की चीज होते हैं जिन। अजसाम लतीफा डेलिकेट बारीक होने का यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि बड़े सेंसिटिव होते हैं ये, नहीं, बल्कि यहाँ पर मतलब ये है कि इनके जो जिस्म होते हैं ना उनको हम अपनी फाइव सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम अपने हवास खमसा से इनको महसूस नहीं कर सकते, ना हम आंखों से देख सकते हैं, ना हम कानों से इनको सुन सकते हैं, ना जो है हम अपनी नाकों से इनको सूंघ सकते हैं, ना अपने हाथ पैर से जो है वो इनको टच कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा जो है मैं हमेशा भूल जाता हूँ, आप उसको अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा। तो हवास खमसा जो है ना उनसे हम इनको परसीव नहीं कर सकते, इस वजह से ये अजसाम लतीफा कहलाएं, ठीक है। बाकी इनका जिस्म है आग से बना हुआ जिस्म है, और आग कोई सेंसिटिव चीज तो नहीं समझ में आती भाई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कैटेगरी है ना अल्लाह ताला की मखलूक की, जिसके लिए नौ का लफ्ज इस्तेमाल किया कि इस नौ यानी इस किस्म के लिए असल लफ्ज जिन या जिन्नात इस्तेमाल होता है, ठीक है। इनमें से जो ईमान कबूल ना करें, काफिर रहें, उनको शयातीन कहा जाता है, ठीक है। तो शैतान की जमा है शयातीन, और शैतान का जो लफ्ज है ना ये अरबी जुबान का एक लफ्ज है जो कि उसका उमूमी मानी ये है कि जो भी बगावत पर उतर आए उसको शैतान कह दिया जाता है। बगावत पर जो भी उतर आए यानी रिबेलियस, बिल्कुल हदूद क्रॉस कर जाए ना, उसको शैतान कहा जाता है अरबी जुबान में, ठीक है। अब ये शैतान का लफ्ज जो है ये किसी इंसान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि जो कि गुनाह के अंदर अल्लाह की नाफरमानी के अंदर हदूद क्रॉस करके जो है ना बिल्कुल बागी बन जाए, रेबल बन जाए अल्लाह ताला का, तो उसको भी शैतान कहेंगे। बेशक वो इंसान है लेकिन शैतान कहेंगे। हत्ता के अरबी जुबान के अंदर किसी ऐसे जानवर को भी कि जो कि अपने मालिक की बिल्कुल हुक्म नहीं मान रहा और बिल्कुल आउट हुआ वह है, और जैसे घोड़ा, घोड़ा जो है वो एक फर्माबरदार जानवर है, पालतू जानवर है जो कि मालिक के इशारों के ऊपर चलता है। लेकिन अगर कोई घोड़ा जो है ना वो जंगली घोड़ा हो या जंगली हो जाए, उसके ऊपर कुछ उसका तबीयत वबीयत खराब हो जाए है ना, उसका मेंटल इलनेस हो जाए घोड़े को, अब वो जो है वो लाते मार रहा है, मालिक को अपने ऊपर बैठने नहीं दे रहा, गिरा रहा है अपने ऊपर बैठने वाले हर शख्स को, तो उस घोड़े को भी शैतान कहा जाएगा। ठीक है, इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्योंकि हर चीज को फिर उसकी हदूद से आगे भी ले जाते हैं, तो इस वजह से कोई बच्चा भी जो है ना वो अगर बहुत ज्यादा नाफरमान या बहुत ज्यादा शरारती हो ना, तो उसको भी कहते हैं शैतान है, शैतान, शैतान का लफ्ज उसके लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बच्चे के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा जो होता है ना ये अहकाम शरिया का मुकल्लफ नहीं होता, ये जो है वो अभी बालिग नहीं हुआ है, और इस वजह से इसके ऊपर जो है ना वो जिम्मेदारियां वैसी नहीं आई हैं, तो इस वजह से ये शैतान की डेफिनेशन में आ ही नहीं सकता, बेशक कितना शरारती क्यों ना हो, बेशक आपकी बात जो है वो ना मान रहा हो, लेकिन आप उसको शैतान नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि वो अपने रब की नाफरमानी जो है ना वो अभी उस पर आई नहीं है, हुक्म आई नहीं है अभी तक उसके ऊपर, तो वो कैसे फिर वो शैतान बन सकता है। ठीक है, तो बच्चों के मामले में हमें जरा अपने आप को बर्दाश्त करना चाहिए, रोकना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो बच्चा है ना ये मैं बाजार से खरीद के तो नहीं लाई, राइट, बाजार से तो नहीं खरीद के लाई, किसी किसी चिड़ियाघर के अंदर बंधा हुआ था पिंजरे के अंदर, तो वहां से जो है ना मुझे उसकी शक्ल सूरत पसंद आई तो मैंने पैसे देकर के चिड़ियाघर वालों से इस बच्चे को खरीद लिया, राइट, या जो है वो किसी टॉय शॉप के अंदर ये बच्चा जो है वो बंद था तो मैं उस टॉय शॉप से खरीद के ले आई, या मैं किसी जो है वो ऑर्फेनेज से खरीद के ले आई। ऑर्फेनेज से कितने लोग बच्चे लेकर के आते हैं, आप में से कोई है जो कि ऑर्फेनेज से यतीम खाने से बच्चा लेकर के आए हो अपना, राइट, खुद ही अपने वतन से ही पैदा किए हैं ना अल्लाह ताला के हुक्म से, राइट, तो अब वो बच्चा जो था वो अपने घर में था, अपने हाथों में था, और अपने सामने उसकी जो है वो परवरिश हुई है, जैसे भी हुई है आपने करी है। ठीक है, अब वो अगर शरारती निकला है तो भाई उसका कसूर कुछ अपने अंदर भी जरा देख लें कि भाई मेरा क्या उसके अंदर कसूर था, मैंने उसको अच्छा क्यों नहीं बनाया, मैंने उसको तमीज़दार क्यों नहीं बनाया, ठीक है ना, मैं उसको जो है वो कंट्रोल क्यों नहीं कर सकी, वो शरारती क्यों बन गया। ठीक है, तो अब उस बच्चे का तो कसूर नहीं। हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपके जो है वो सास ससुर ने उसको हजम कर लिया हो, जैसे कि हमारे बहुत से घरानों के अंदर सास ससुर जो है ना वो बच्चे को ले लेते हैं, कुछ तो इस वजह से ले लेते हैं क्योंकि जो बच्चे की अम्मा होती हैं वो बड़ी मसरूफ होती हैं, अपने जॉब के अंदर मसरूफ होती हैं या अपने दूसरे मशगूलियात के अंदर मसरूफ होती हैं, मशगूलियात के अंदर उनकी अपने इंस्पिरेशन होती हैं, अपनी एस्पिरेशन होती हैं, तो बच्चे के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। अब जो है वो जो सास ससुर हैं या कभी लड़की की भी अम्मा अब्बा होते हैं उनको जो है बच्चों को संभालना पड़ जाता है, ठीक है ना, तो फिर तो अब वो कैसे पला होगा फिर, या ये कि जो है वो कभी जो है वो कब्जा ग्रुप भी हमारे यहाँ बहुत माशाल्लाह, कब्जा ग्रुप भी कम की थोड़ी है कि आकर कब्जा कर लेते हैं बच्चे के ऊपर, ठीक है ना, और वो उस वक्त जो है वो बच्चे के अब्बा जो है ना उनको सारी की सारी जो है वो अपनी आखिरत उसी मौके पे याद आनी शुरू हो जाती है कि अम्मा अब्बा जो है वो उनके सामने आकर मैंने कुछ कह दिया तो मेरी तो दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी, तो इस वजह से बच्चा उठा करके सास ससुर को दे देते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं, लेकिन या तो वो एक्सेप्शंस होती हैं, रूल नहीं होती, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है, या यहां पर ऐसा भी होता है कि ये इतना मजबूरी वाली सिचुएशन नहीं होती। अगर माँ अकलमंदी इस्तेमाल करे, अगर माँ अकलमंदी से और जरा तमीज से मामले को हैंडल करे तो वो इस सिचुएशन में भी बच्चे को वापस ले सकती है, अपने बच्चे को अपने सास ससुर से या दूसरे कब्जा ग्रुप वाले लोगों से वापस ले सकती है। ठीक है, अगर वो सीख साख करके मशवरे के साथ अपनी जिंदगी गुजारे तो कर सकती है, लेकिन वो चूंकि उसने सीखना नहीं होता उसने जो है वो किसी से पूछना नहीं होता, तो इस वजह से जो है वो विक्टम मेंटालिटी के अंदर चली जाती है कि हाय मैं तो विक्टम हूँ, दूसरों ने जो है वो मेरे बच्चे को मुझसे गसब कर लिया और अब मैं क्या करूँ, मैं तो मजबूर हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि वाकई मजबूरी होती है। ठीक है, तो बहरहाल भाई बच्चा जो है वो शैतान नहीं होता। बच्चे को शैतान जो जो इस किस्म के जो मामलात हो जाते हैं बच्चे के साथ, तो उसको या तो हमने बनाया होता है ऐसा, या हमारे साथ रहने वाले लोगों ने बनाया होता है जिनसे कि हम उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे, या हम उठा करके ऐसे माहौल में भेज देते हैं कि जिस माहौल में जाकर के फिर वो अपने चारों तरफ इसी किस्म के शयातीन को देख रहा होता है, तो वो भी शैतान बन जाता है। ठीक है, तो बच्चों को शैतान नहीं कहें। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा, अगर वो जो है वो राउडी बिहेवियर कर रहा है, अगर इस किस्म का कोई भी मसला है, तो अल्लाह ताला से सबसे पहले अपनी गलतियों की माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले अपनी गलतियों की अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वाली दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। ये जो वाकयात है ना कुरान मजीद में, सूरह अंबिया भी हम पढ़ रहे हैं, ये किस्से कहानियां बेड टाइम स्टोरीज तो नहीं है ना भाई, ये हमारे लिए लेसन है ना, इनके अंदर हिदायात है ना। तो वही यूनुस अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के जो वाकयात हैं वो क्यों है भाई, तुमसे भी गलती हो जाए जिस तरह उनसे गलती हो गई थी, तो सबसे पहले अपनी गलती को एडमिट करो और अल्लाह ताला से अपनी गलती पे माफी मांगो, बजाय इसके कि किसी दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दो। ठीक है ना, तो जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी थी ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है ना, अपने ऊपर पूरा का पूरा ले लिया, क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो अकेले ये वाला काम कर रहे थे, तो उन्होंने अकेली वाली दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, अगर माँ बाप दोनों को ये एहसास हो जाए कि बच्चा जो है ना वो हाथ से निकल रहा है, बच्चा जो है वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, बहुत ही राउडी हो गया है, तो दोनों जो है फिर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा वाली दुआ मांगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ठीक है, तो इस तरीके से अपने गुनाहों के ऊपर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला के सामने इस गुनाह को एडमिट करके, चाहे इंडिविजुअली एडमिट करें चाहे जो है वो माँ बाप दोनों एडमिट करें, उसके बाद फिर जो है ना अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। नंबर वन, अपने गुनाहों की माफी के, जिस गुनाह की वजह से जो है वो बच्चा ऐसा बन गया है। ठीक है, ये स्टेप जो है ना हम स्किप नहीं कर सकते, हम ये स्टेप जो है ना वो स्किप नहीं कर सकते। दिल तो बड़ा चाहता है, नफ्स तो बड़ा चाहता है, नहीं नहीं इसको तो स्किप कर जाओ, इस वाले स्टेप को स्किप कर जाओ, है ना, मेरे गुनाह की वजह से तो थोड़ी ऐसा बना है, मेरी गलती की वजह से तो थोड़ी ऐसा बना है, वो तो उसकी गलती की वजह से बना है, दूसरे की गलती की वजह से बना है, मेरे शोहर की गलती की वजह से बना है, मेरे ससुर और सास की गलती की वजह से बना है, मेरी गलती की वजह से तो थोड़ी ऐसा बना है। शैतान यही कहता है हमारे नफ्स को कि इस वाले स्टेप को स्किप कर जाओ, जंप लगा जाओ उस वाले स्टेप के ऊपर से, ठीक है ना, और दूसरे स्टेप पे आ जाओ, ईमान वाले हो ना, चलो अल्लाह ताला से मदद मांग लो, लेकिन पहले वाले स्टेप को स्किप करवाना चाहते हैं, हरगिज नहीं, पहले वाले स्टेप को हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, पहले अपनी गलती के ऊपर अल्लाह ताला से माफी मांगे, दूसरा स्टेप ये है कि अल्लाह ताला से मदद मांगे कि अल्लाह अब मुझसे गलती हो गई, बिगड़ गया मामला, खराब हो गया, मुझसे नहीं संभल रहा, मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा, लेकिन आपके कंट्रोल में तो आता है ना अल्लाह, आपको तो इसके ऊपर कुदरत है ना या अल्लाह। ठीक है, मैं अपने आप को और अपने बच्चों को आपके हवाले करती हूँ, आप इस मेस अप को जो है ना वो सही करवा दीजिए, कर दीजिए। ठीक है, ऐसे बंदा अल्लाह ताला से दुआ मांगे अपने आप को हवाले करके अल्लाह ताला के। ठीक है, फिर देखें अल्लाह ताला की मदद आती है उसके बाद कैसे आती है। ठीक है ना, वॉट इफ वन ऑफ द स्पाउसेस इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स, इसका जवाब तो आप ही देंगी, इसका जवाब तो आप ही देंगे। इवन इफ टॉकिंग अबाउट दिस इज अ कॉज ऑफ फाइट, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट दिस, जवाब तो देना पहले सवाल का, क्योंकि मैंने अभी 3 मिनट पहले भी शायद इसका जवाब नहीं दिया था, 2 मिनट पहले या 4 मिनट पहले दिया होगा, आप जवाब दें क्या क्या कहा था। इफ वन ऑफ द स्पाउसेस इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द मिस्टेक, ठीक है ना, अगर सिर्फ एक ही अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर रही है तो फिर क्या क्या करना था, अभी अभी बताया था जी।
उन्हें कोई और बता दें।
यूनुस अलैहिस्सलाम वाली दुआ करना, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो थी ना, ये इंडिविजुअल वन पर्सन वाली दुआ थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय तेरे, अंत सुभानका, आप हर गलती से पाक हैं, आप हर गलती से मुबर्रा हैं, आप हर गुनाह से, हर कोताही से, हर रॉन्ग डिसीशन से, हर मिस मैनेजमेंट से, अल्लाह ताला आप मिस मैनेज नहीं कर सकते किसी मामले को, आप गलत डिसीशंस नहीं ले सकते किसी बात के अंदर, ठीक है ना, अंता सुभाना का, आप बिल्कुल पाक साफ हैं ऐसी गलतियों से। इन्नी, बेशक मैं, मी माई सेल्फ आई, मी माई सेल्फ एंड आई जो है ना वो अच्छे माने में इस्तेमाल किया जा सकता है, मी माई सेल्फ एंड आई, इन्नी कुंत मिन अज़्ज़ालिम, मैं ही गलत करने वाली हूं, ठीक है। तो जब दूसरा स्पाउस जो है ना वो मानने को तैयार ना हो ना, तो अब आप उसके साथ झगड़ा लड़ाई करके जो है ना मामले को और खराब ना करें, ठीक है ना, उसको एडमिट करवाने की कोशिश कर रही हैं कि मान जाओ तुमने गलती करी है, ठीक है मैंने भी गलती करी है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे कि मैंने भी गलती करी है, ठीक है ना, ज्यादातर तो यही होता है तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है सब कुछ, ठीक है ना, तुमने जो है वो उसको लाड प्यार के जरिए से जो है ना बर्बाद कर दिया, तुमने जो है उसको सर पे चढ़ा दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर उससे अगले स्टेप में जा भी रही है कि नहीं मैंने भी गलती करी, तुमने भी गलती करी, मैं तो मान रही हूँ तुम क्यों नहीं मान रहे, मैं तो मान रही हूँ तुम क्यों नहीं मान रहे, तुम भी मानो, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करती रहूंगी, ये गलत है, गलत है। ये करने से क्या होगा, घर का माहौल और खराब होगा, बच्चा और बिगड़ेगा, बच्चा और खराब होगा, ठीक है। तो झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला से रुजू करके ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनस सालिहीन, बस मैं ही हूं या अल्लाह जिसने के गलत काम किया, ठीक है। तो शयातीन जो है वो हर रिबेलियस किस्म के मखलूक को कहा जा सकता है। तो जो जो जिन्नों में से जो जो काफिर होते हैं ना, तो जिन्नों के अंदर जो काफिर होते हैं उन सबको शयातीन क्यों कहा जाता है, उनको इसलिए शयातीन कहा जाता है क्योंकि जिन्नों को के अंदर जो है ना वो एक ऐसी सिफत है कि जब वो बुराई करते हैं ना तो फिर वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, उनको अल्लाह ताला ने सलाहियत, बहुत सारी सलाहियतें हमसे ज्यादा दी हैं, ठीक है ना, बहुत सारी सलाहियतें हमसे ज्यादा दी हैं। तो अब जितनी ज्यादा सलाहियतें होती हैं ना, तो अगर उनको गलत रास्ते पे इस्तेमाल किया जाएगा तो बहुत तेजी से फिर खराबी आती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है बेवकूफ सा है, ठीक है ना, सीधा साधा भोला भाला है ना, वो गुनाह करेगा ना तो उसके गुनाह भी जो है ना बस छोटे छोटे गुनाह ही होंगे, है ना, बहुत ज्यादा वो बड़े गुनाह भी नहीं कर सकता क्योंकि दैट पर्सन इज नॉट वेरी क्रिएटिव, है ना, उसके अंदर ऐसी वो क्या कहते हैं तख्लीकी सलाहियतें नहीं है उसके अंदर, तो वो जो है वो देखा देखी के चंद गुनाह कर लेगा, ठीक है। और एक बच्चा, एक 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 बंदा है जो कि बड़ा अकलमंद है, बड़ा जो है ना, यानी उसके अंदर बड़ी सलाहियतें हैं, बड़ी तख्लीकी सलाहियतें, राइट, तख्लीकी सलाहियतें, बड़ा क्रिएटिव इंसान है। अब ये अगर गुनाह के रास्ते पर जाएगा तो ये फेसबुक बनाएगा, ये फेसबुक जो है वो बेवकूफों ने नहीं बनाया ना, फेसबुक इन्होंने बनाया जिनके अंदर तख्लीकी सलाहियतें थी, उन्होंने जो है वो फिर ये सोशल मीडिया के जो टूल्स हैं उन्होंने बनाए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त गुनाह के रास्ते के ऊपर इन चीजों को इस्तेमाल कर रही है, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा सलाहियतें उतना ज्यादा नुकसान अगर उसको गुनाह के रास्ते पर इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना, कौन सी मुश्किल बात है ये समझना, सही है, आगे समझ में। उसी तरीके से जिन जो है ना उनको अल्लाह ताला ने उड़ने की सलाहियत, इंसानों को ना नजर आने वाली सलाहियत, और जो है वो फिजिकल पावर उसके अलावा उनके पास कितनी ज्यादा है हमारे मुकाबले में, बहुत ज्यादा फिजिकल पावर है। अब ये जब गुनाह के रास्ते पे पड़ते हैं ना तो ये इंसानों को पीछे छोड़ जाते हैं, ठीक है ना, ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से इन सब के लिए शयातीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है, जो भी काफिर है वो शैतान, जबकि इंसानों में ऐसा नहीं होता, इंसानों में हर काफिर शैतान नहीं बन जाता, हर फासिद फाजर इंसान जो है ना वो शैतान की क्लासिफिकेशन में नहीं आता, ठीक है,
चले
हमने कोई एक तार छेड़ दी, सवाल आ रहे हैं। अच्छी बात है कि इफ हस्बैंड से इसके बच्चों को जितना मर्जी समझा लो, उन्होंने जो बनना है बड़े होकर वही बनना है, और मोबाइल या स्क्रीन खुद ही ना छोड़ते हों, उन्हें कैसे गाइड करें? बच्चों की तरबियत की फिक्र ही नहीं, अगर कोई बयान सुने तो वो भी ना सुने तो क्या करें? आपने पहले दो स्टेप्स कर लिए, ठीक है। पहले दो स्टेप्स जो थे, अपने गुनाहों से माफी मांगना, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पे माफी मांगना, और दूसरा स्टेप जो है वो अल्लाह ताला से मदद मांगना, ठीक है ना। पहले तो ये दो स्टेप्स करें, उसके बाद तीसरा स्टेप जो है ना वो ये होगा कि आप तरीके सीखें, इल्म हासिल करें कि एक माँ जो है वो तने तनहा बगैर अपने शौहर के मदद के कैसे अपने बच्चों को गुनाहों से बचाने की मेहनत कर सकती है, और कैसे अपने बच्चों की जो है ना वो जहन साजी कर सकती है। ये इल्म हासिल करना पड़ेगा, ये इल्म है, ये आपको वही के जरिए से नहीं पता लगेगा बल्कि इल्म हासिल करना पड़ेगा, यानी आपके ऊपर वही नाज़िल नहीं होगी ना, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड इल्म है, ये सीखने वाला इल्म है, ये आप मशायख की किताबें हैं, मशायख के बयानात हैं, और जो मशायख के तरबियत याफ्ता दूसरे लोग हैं, जैसे आपकी मुअल्लिमात हैं, और जो निज़ाम होता है सीखने सिखाने का, तरबियत वाला निज़ाम, वहां से आप जुड़े और वहां से जो है ना वो अपनी सिचुएशंस को पूछ पूछ करके डिस्कस करें, और फिर आपको आइडियाज मिलेंगे कि अच्छा ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ठीक है। बाकी ये कि हस्बैंड साहब जो ये कह रहे हैं तो उनको बहस तो खैर करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप कोई अच्छे मूड में, अच्छे अंदाज में उनको जवाब देना चाहें तो ये जवाब दे सकती हैं कि भाई जिसने जो बनना है वो बनेगा, है ना। बेशक आप कह रहे हैं कि जिसने जो बनना है, तो आप जो बात कर रहे हैं ना, ये आप बात कर रहे हैं तकदीर की बात कर रहे हैं, तकदीर में जिसके लिए जो लिखा है वो उसके साथ होगा, सच्ची बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुरान ये क्या कर रहा है फिर, कुरान क्या है, किताब हिदायत है ना, नबी अलैहिस्सलाम हादी बनकर के आए ना दुनिया में, तो भाई हादी को किसी को कोई बात के, हादी क्या करता है, किताब हिदायत क्या करती है, लोगों को जो है वो नसीहत करती है, लोगों को जो है वो रास्ता दिखाती है, उसी तरह से हादी पैगंबर जो है वो लोगों को अच्छी बुरे की तमीज बताते हैं, है ना, लोगों को समझाते हैं ये करो तो फायदा होगा, ये करो तो नुकसान होगा, है? तो तकदीर क्या हो, क्या अल्लाह को नहीं पता तकदीर क्या चीज होती है, अल्लाह ने तो तकदीर बनाई है, नबी अलैहिस्सलाम को तकदीर का नहीं पता कि तकदीर क्या चीज होती है, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम जो अबू जहल को जाकर के दावत तो तबलीग क्यों कर रहे थे, राइट, अबू लहाब को क्यों दावत तो तबलीग करते थे, ठीक है ना, मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिरौन के पास जाके क्यों दावत दे रहे थे, क्यों समझा रहे थे। उसी तरीके से जब मुसलमान हो जाते थे लोग, तो नबी अलैहिस्सलाम सहाबा कराम की तरबियत क्यों फरमाते थे, जिसने जो बनना था उसने तो बन नहीं है, क्या जरूरत है भाई सहाबा को सिखाने की, है ना भाई। तो इतनी बुकरातियत अच्छी नहीं होती, इसको कहते हैं बुकराती बनना, ठीक है ना। तकदीर के बारे में कहीं पढ़ लिया होगा, अब जो है ना वो उसी को हर चीज में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, गोया के अल्लाह से भी ज्यादा इनको तकदीर समझ में आ गई है, और नबी अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा इनको तकदीर समझ में आ गई है, ठीक है ना, कि भाई जिसने जो बनना है उसने बनना ही है, तो बोलने की क्या जरूरत है, ठीक है ना भाई। तो नबी अलैहिस्सलाम ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं ना बातों को, तो हमें तो नबी अलैहिस्सलाम की मिसाल को फॉलो करना है, जिस तरह उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत फरमाई, अपने सहाबा की तरबियत फरमाई, तो हम अपने बच्चों की तरबियत क्यों नहीं करें। अल्लाह का हुक्म भी है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ठीक है ना। तो वो तकदीर में होता है कि बनने दो जो बनना है, उसने तो बनना ही है जो बनना है, है ना, तो कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा के हुक्म की क्या जरूरत थी भाई, ठीक है। तो उनको कहने दो जो कह रहे हैं, आप जो है ना वो अपने ऊपर मेहनत करें और ऐसी बन जाएं जैसे कि माशाल्लाह मुसलमान औरतें जिनको के मतलब नाउजबुद्दा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जो शोहर हैं वो नाउजबुद्दा कुछ तातारी है, लेकिन एक मिसाल दी जाती है कि जब तातारियों के मर्द मुसलमान औरतों को बगदाद में से अगवा करके ले गए थे, ठीक है, और उनको अपने घरों के अंदर जो है ना नाजायज अपनी बीवियां के तौर पर रखना शुरू कर दिया था, ठीक है, तो मर्द जो थे वो तातारी थे, कितने मुसलमानों को उन्होंने कत्ल किया था और कितने वहशी किस्म के वो लोग थे, लेकिन जो ये बच्चियां थी ना ये थी मोमिना, ये ईमान वाली थी। मर्द जो बाहर थे वो तो बिगड़ गए थे, जब ही तो उनको अल्लाह ताला ने सजा दी ऐसी, मारे गए सारे के सारे। लेकिन ये घरों के अंदर रहने वाली औरतों के अंदर जो है ना ईमान अभी तक था और हया पाकदामनी इनको के अंदर थी। अब ये तातारियों के घरों में जा करके भी जो है ना इन्होंने फिर अपने ईमान को संभाल करके रखा, और इनकी जो नाजायज औलाद हुई, नाजायज औलाद काफिरों की औलाद, राइट, इन्होंने काफिरों के घर में रहते हुए काफिरों की औलाद की जो इनके बतन से पैदा हुई थी, ऐसी ईमानी तरबियत की, ऐसी ईमानी तरबियत की कि पास बा मिल गए काबे को सनम खाने से, राइट। इन्हीं की औलादें बड़ी होकर के फिर उन्होंने अपना मुसलमान होना डिक्लेयर किया और फिर सल्तनत वापस मुसलमानों में आ गई। इसी के ऊपर अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, है आया यू रशे तातार के अफसाने से पास बा मिल गए काबे को सनम खाने से, यानी यही तातारी बच्चे जो थे ना ये बड़े होकर के फिर इन्होंने ऐसे किया है ना, इस्लाम को फिर से सरबुलंद किया दुनिया के अंदर, ठीक है। तो जब वो औरतें तातारियों के घरों में अपने बच्चों की तरबियत कर सकती हैं, तो आज मुसलमानों के घरे में घरों में जिनके के शोहर भी मुसलमान हैं, बेशक दादा मलो मल ना करते हो, दादा उनको बातें समझ में ना भी आती हूँ, लेकिन बहरहाल मुसलमान मुल्क होता है या मुसलमान एक मुआशरा होता है या खानदान तो मुसलमान है ना, कम अज कम इंडिया में भी अगर रहते हैं तो खानदान तो मुसलमान है ना, तो वहां पर मुसलमान औरतें अपने बच्चों की तरबियत कैसे नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती, ठीक है। बस दुआएं अच्छी तरीके से मांगने की जरूरत होती है और इल्म हासिल करने की जरूरत होती है। आप हमारे बयान सुना करें, उसके अंदर इन टॉपिक्स के ऊपर बात होती है, थोड़ी कोशिश से समझ में भी आ जाती है लोगों के, ठीक है। तो टैब्स से बचाना, इन सब के लिए एक आसान सी बात यह है कि जो टैब्स और फोन्स का जो नशा होता है ना, नशा, ठीक है ना, इस नशे को जो है ना वो दूसरे नशे से रिप्लेस करना होता है, ठीक है, दूसरे नशे से एक नशे को रिप्लेस करना होता है। टैब्स के मुकाबले में जो नशा इस वक्त दुनिया के अंदर अभी भी अवेलेबल है वो क्या नशा है? अच्छा नशा, अच्छी किताबों का नशा, अच्छी किताबों का नशा। ये एक ऐसा नशा है कि जिससे जो है ना आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं, खुद ऐसी झूठे झूठ पर, यानी झूठ बोलने को नहीं कह रहे आपको, लेकिन थोड़ी सी किताब अपने हाथ में लेकर के जो है ना पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, अपने हाथ में कोई किताब उठाएं थोड़ा सा ना, बेशक आपका मूड बिल्कुल नहीं है पढ़ने का और आपको जो है बिल्कुल यानी आदत नहीं है पढ़ने की, लेकिन किताब पढ़ना जो है ना वो बच्चों की खातिर, राइट, बच्चों की इस्लाह की खातिर खुद किताब पढ़ने के ऊपर अपने आप को जरा ऊट ऊट करके, कहते हैं आप कस के, राइट, हमारे बेटे साहब बता रहे थे कस के जो है ना वो उन्होंने सीखा है, ठीक है, तो कस के ना अपने आप को वो किताब पढ़ने के ऊपर जरा लगा लें। आप यकीन करें आपको किताब पढ़ता देख करके ना आपके बच्चों में भी शौक पैदा हो जाएगा, वो भी किताब पढ़ना शुरू कर देंगे, इसी तरीके से किताब अवेलेबल भी करने घर के अंदर, ठीक है ना। उनको एक दफा अच्छी किताब, ये नहीं कि वाहियात किस्म की नॉवलें या काफिरों की लिखी हुई जो है ना वो उल्टी सीधी बकवास वाली किताबें नहीं, बल्कि उलमा की सरपरस्ती में जो बच्चों की किताबें बन रही है ना, सब माशाल्लाह बहुत है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में भी और इंडिया में बहुत मिल जाती हैं, ठीक है। तो उलमा की सरपरस्ती में जो अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें हैं, वाकयात की किताबें हैं और अच्छे एनेक्डोट्स की किताबें हैं, वो अपने घर में ले आए किसी तरीके से भी, ठीक है ना। और बच्चों को जो है ना अगर उनकी लत लग गई ना तो फिर ये फोन की लत जो है ना फिर उनके पास टाइम नहीं रहेगा इस फोन के लिए, ठीक है। और बाकी अल्लाह की मदद जब आती है ना तो फिर तो हमारे वहम गुमान में भी जो नहीं हो सकता वो भी हो जाता है ना, भाई अल्लाह अल्लाह है भाई, अल्लाह ताला हमारे जैसा कोई थोड़ी है, ठीक है ना। तो अल्लाह की मदद मुतवज्जो हो गई सब सेट हो जाएगा, फिक्र ही ना करें। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को जिन्नात दिखते हैं, कुछ इंसान जिन्नात को कुरान पढ़ाते हैं, वो हमारे जैसे इंसान नहीं होते ना, जिनको दिखते हैं तो अल्लाह ताला की मर्जी की वजह से किसी को जो है ना अल्लाह ताला ये कशफी नजर अता फरमा दे, कशफ की निगाह, ठीक है ना। तो कशफ की निगाह से जो है फिर आप अजसाम लतीफा को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग से आपकी मुराद वही वाले लोग हैं जो कि जिनको अल्लाह ताला ने कशफ की निगाह दे दी। बाकी जो लोग कुरान पढ़ाने वाले होते हैं जन्नात को, तो ये वो असहाबे कशफ होते हैं कि जो के अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा नेक बंदे, ठीक ठीक है ना, तो फिर वो जिन्नात को जो है वो कुरान पढ़ाने का काम भी कर रहे होते हैं, बाकायदा बयानात का काम भी कर रहे होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम जिन्नात में बयान करने के लिए जाते थे, राइट, दावत और तबलीग का काम करने के लिए अलग से टाइम नबी अलैहिस्सलाम ने जिन्नात का रखा हुआ था। उसी तरह तबलीगी इज्तिमा के अंदर मशहूर है ये बात, हमने बड़े लोगों से सुनी है ना, हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, तो वो जो है वो मर्दों में अलग बयान होता था और जिन्नात में अलग बयान होता था, जिन्नात का अलग पंडाल होता था, ठीक है। तो ये सिलसिला चल रहा है, तो इंसानों को अल्लाह ताला ने जो है ना वो जिन्नात की दावत और तबलीग के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों को ही पसंद फरमाया, ठीक है। तो इंसान इस तरीके से करते हैं, वो कुछ इंसान होते हैं, हम नहीं होते हैं। बहरहाल आगे क्या, मकाफात अमल के बारे में बता दें, अगर आज आप किसी के साथ जैसा सलूक करेंगे कल को आपके साथ भी ऐसा ही होगा, क्या जिंदगी मकाफात अमल का नाम है? जिंदगी मकाफात अमल का नाम है भी, ठीक है, लेकिन ये बात भी याद रखें कि सारी मकाफात अमल जिंदगी में नहीं होती, ठीक है, सारी मकाफात अमल जिंदगी में नहीं होती। जिंदगी में जो मकाफात अमल होती है ना, ये बहुत थोड़ी सी होती है, बहुत छोटी सी, ठीक है। असल मकाफात अमल की जगह जो है वो आखिरत है, लेकिन उमूमी तौर पर किसी ना किसी अंदाज में मकाफात अमल का जो प्रोसेस है वो दुनिया में शुरू हो जाता है। अच्छे काम का बदला अच्छे अंदाज में मिलना शुरू हो जाता है और बुरे काम का बुरे अंदाज में मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी बेजा बेकसूर को कत्ल कर दिया, ठीक है, तो अब ये नहीं कि इसी दुनिया के अंदर उसको कत्ल किया जाएगा, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बल्कि इतना हो सकता है कि उसको जो है ना वो अपने कत्ल के ऊपर जो है वो ऐसी यानी डिप्रेशन होनी शुरू हो जाए, ऐसी उसको जो है वो फिजिकल इलनेसेस शुरू हो जाए कि उसका प्रोसेस शुरू हो जाए दुनिया के अंदर ही। कत्ल नहीं किया जाएगा इसको, कत्ल तो उसको आखिरत में किया जाएगा उसके बदले में, लेकिन दुनिया में उसको जो है ना वो, जैसे कि अमरीकी सोल्जर्स इराक के अंदर जो है वो कत्ल करके आते हैं और फिर उसके बाद इतना शदीद जो है उनके ऊपर डिप्रेशन तारी होती है कि फिर उनमें से अक्सर जो है वो अपने आप को मार लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, ठीक है ना। बड़ा मशहूर है अमेरिकन वेटरन्स ऑफ वॉर जो है वो खुदकुशी उनका करना, ठीक है। तो सास और बहू वाला जो मामला होता है तो ये भी किसी ना किसी तरह से शुरू हो जाता है दुनिया के अंदर, ठीक है ना, लेकिन पूरा पूरा मामला ऐसा नहीं होता कि हमें भी नजर आ सके। बाकी किसी ने जो है वो मकतबा बैतुल इल्म में बच्चों की बुक्स ऑर्डर की जा सकती हैं, तो उसका यहाँ पे उन्होंने लिंक लिख दिया है माशाल्लाह, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फिर तो आप आसानी से कर सकती हैं, अगर इंडिया में हैं तो शायद आपके लिए इतना आसान ना हो। फिर भी हम लिंक जो है ना वो यहाँ शेयर कर लेते हैं, हमें नहीं पता इनके बारे में लेकिन किसी स्टूडेंट ने शेयर किया है तो इस वजह से आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे मकतबे मिल जाएंगे जहाँ पर उलमा की, देखें इस्लामी बुक जो है ना वो गैर उलमा ने भी बहुत सारी लिखी हुई है, उनमें असल में पता कुछ नहीं होता कि जो गैर उलमा की लिखी हुई बुक्स है ना तो उनमें कोई अकीदे के खिलाफ बात भी हो सकती है, गलत अकीदे वाली बातें भी हो सकती हैं और गलत इल्म गलत अमल वाली बातें भी हो सकती हैं। बेशक इस्लामी बुक्स हैं लेकिन कोई कोई गारंटी नहीं है कि अकीदा बिल्कुल ठीक हो और अमल बिल्कुल ठीक हो, सिर्फ इस्लामी कह देने से कोई सही मानों में इस्लामी नहीं बन जाती। इस वजह से एहतियात करनी चाहिए कि भाई जब आप इस्लाम की तरफ जा ही रहे हैं, बच्चों को इस्लामी बुक्स पे ला ही रहे हैं, तो कम से कम अकीदा और अमल जो है वो सही तो होना कम से कम, ठीक है। ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा बुक्स मार्केट में मौजूद हैं, बड़ी अच्छी अच्छी क्या कहते हैं ग्राफिक्स के साथ और तस्वीरों के साथ और बहुत यानी अट्रैक्टिव किस्म की इस्लामिक बुक्स मौजूद हैं, लेकिन लिखने वाले जो हैं वो या तो हदीस के मुनकर मुनकर हदीस, ठीक है ना, या ये कि इस किस्म के किसी बेजर अकीदा जैसे ईसा अलैहि सलाम दुनिया में आना इसके मुनकर, नहीं जी ईसा अलैहि सलाम दुनिया में कोई नहीं आने वाले, राइट। इमाम मेहदी के मुनकर, नहीं जी मेहदी कोई नहीं आने वाले। आजकल इस किस्म के चक्कर बहुत चल रहे हैं, बहुत लोग हैं इस किस्म के जो कि इन इन अकायद के ऊपर जो है ना वो बिलीव नहीं करते, लेकिन बड़े दीनदार बस मनते हैं, बड़े जो है ना वो दीन के दर्द भी रखने वाले, और उन्होंने फिर इस तरह के इस्लामिक बुक्स बच्चों के लिए भी बहुत सारी लिखी हुई होती हैं, ठीक है। इन बातों का जरूर से ख्याल रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो शयातीन के बारे में हमने ये पढ़ लिया, और फरमाते हैं कि जाहिर ये है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर तो सभी जिन्नात थे, ठीक है, ख्वाह मोमिन हो या काफिर हो, ठीक है, मोमिन जन भी इनका उनका बात तो मानते ही थे उनकी बात, और जो काफिर थे उनको भी अल्लाह ताला ने मुसख़्खर कर दिया था मुसख़्खर, मगर मोमिनीन तो तस्खीर के बगैर भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहकाम की तामील एक मजहबी फरीजे की हैसियत से करते थे, ठीक है, क्योंकि वक्त के नबी हैं तो ईमान वाला तो वक्त के नबी की बात मानेगा, उनके लिए तस्खीर के जिक्र की जरूरत ही नहीं। इसलिए तस्खीर में सिर्फ शयातीन यानी कुफार जिन्नात का जिक्र फरमाया, ठीक है, वो मिना शयातीन का लफ्ज यहां क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि शयातीन का मतलब होता है काफिर जिन, और काफिर जिन ही को फोर्सफुली तस्खीर करने की जरूरत थी। जो मोमिन होता है तो वो तो अपनी मर्जी से जो है वो अपने आप को पेश कर देता है ना नबी के सामने, उसके लिए तस्खीर की जरूरत ही कोई नहीं, ठीक है। तस्खीर तो कहते हैं जब आप बाकायदा फोर्स लगा करके किसी चीज को मुसख्खर कर लेते हैं, किसी चीज के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उसको तस्खीर करना कहते हैं ना। तो वही फरमाया कि इसीलिए तस्खीर में सिर्फ शयातीन यानी कुफार जिन्नात का जिक्र फरमाया कि वो बावजूद अपनी कुफर व सरकशी के जबरदस्ती हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान रहते थे, और शायद इसीलिए आयत के आखिर में ये जुमला बढ़ाया गया कि हम ही उनके मुहाफिज थे, वरना कुफार जिन्नात से तो हर वक्त ये खतरा था कि वो कोई नुकसान ना पहुंचा दे, मगर हिफाजत खुदाबंदी का पहरा उन पर लगा हुआ था, इसलिए कोई गजंद ना पहुंचा सकते थे। यानी ना सिर्फ ये कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानना उनके लिए लाजमी था, जैसे शायद सूरह सौद के अंदर हमने पढ़ा था दूसरी क्लास के अंदर कि हैकले सुलेमानी जो ये शयातीन बनाते थे ना, तो उनके ऊपर फरिश्तों का पहरा होता था, अगर वो कुछ हुक्म से इधर उधर करते थे तो आतिशी कोड़े यानी ऐसे कोड़े थे फरिश्तों के पास जो कि आग के बने हुए थे, ताकि वो इन आग के बने हुए शयातीन को ठीक तरीके से पिटाई करें, ठीक है। तो आतिशी कोड़े बरसाते थे फरिश्ते उनके ऊपर, ठीक है। तो एक तो हो गया कि फरिश्ते इस तरीके से उनसे काम करवाते थे जैसे कि गुलामों से काम करवाया जाता है, आपने कभी देखा होगा किसी फिल्म में शायद देखा हो। और दूसरा ये कि ये जो शयातीन होते हैं ना, ये इंसान के ऊपर फिजिकली अटैक करने के लिए भी तैयार रहते हैं। एक तो होता है ना वसवसे डालने वाले शयातीन, राइट, गमरात उस शयातीन वाले, जो गमरात डालने वाले शयातीन होते हैं, ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, गमरात क्या चीज होते हैं, वसवसे क्या चीज होते हैं, ठीक है। तो वो दिस डिफरेंट टाइप ऑफ शयातीन होते हैं जो वसवसे या गमरात वाला काम कर रहे होते हैं, और दूसरे शयातीन ये होते हैं कि जो के तबीयी तौर पर फिजिकली मटीरियली जो है वो इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये एक अलग कैटेगरी है शयातीन की। वो एंट्स के बारे में पढ़ा है, एंट्स चूंटियां, राइट, तो चूटियों का जो जो एक ट्राइब होता है ना, उसके अंदर हर किस्म की चूटियां होती हैं, ये चूटियां जो हैं ये जो है वो हिफाजत पे मामूर हैं, ये चूटियां जो है ना वो गजा लाने पे मामूर हैं, ये चूटियां जो है वो मलका की खिदमत करने पे मामूर हैं, ये चूटियां फलाने काम पे मामूर हैं। उसी तरीके से लगता है कि शयातीन में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका का मफहूम है कि अगर हमारी हिफाजत के ऊपर फरिश्ते ना हो ना, तो शयातीन तो ऐसे अटैक करते रहते हैं कि करने की कोशिश करते रहते हैं कि वो इंसान की बोटियां नोच लें, बोटियां नोच लें यानी हमें टुकड़े टुकड़े कर दें, फिजिकली टुकड़े टुकड़े कर दें, ठीक है। हिफाजत का पहरा का मतलब कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये काम दिया हुआ है, हर एक बंदे के साथ, हर इंसान के साथ, चाहे वो काफिर हो चाहे मुसलमान हो, अल्लाह ताला ने फरिश्तों का पहरा लगाया हुआ है जो कि इन फिजिकल हार्म वाले शयातीन से इंसानों को बचाते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल हार्म वाले शयातीन से जो बचाने वाले फरिश्ते हैं वो काफिरों के साथ नहीं होते, क्योंकि काफिर जो है वो मानने वाले नहीं होते, ठीक है, लेकिन फिजिकल हार्म का मसला डिफरेंट है। अच्छा, एक लतीफा यानी एक लतीफ बात, एक डेलिकेट बात कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए तो हक ताला ने सबसे ज्यादा सख्त और कसीफ अजसाम को मुसख्खर फरमाया जिनमें पहाड़ और लोहा जैसी सख्त चीजें शामिल थी, इसके बिलमुकाबिल सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ऐसे अजसाम लतीफा को मुसख्खर फरमाया जो देखने में भी ना आ सके, जैसे हवा और जिन्नात। हवा भी हम नहीं देख सकते, और जो उड़ती हुई हवा देखते हैं ना, वो हवा नहीं होती, वो तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो तो वो चीजें होती है जिनको हवा उड़ा रही होती है, हवा को थोड़ी कोई देख सकता है, और जन्नात उनको भी कोई नहीं देख सकता। इसमें हक ताला की कुदरत कामिला का हर किस्म की मखलूकात पर हावी होना वाजह किया गया है, इनका जिक्र करके हमारे लिए रिमाइंडर्स हैं कि भाई अल्लाह ताला जो है ना वो हवा पर भी पूरी कुदरत रखते हैं, ना सिर्फ ये कि डायरेक्टली अल्लाह ताला हवा को हुक्म दे करके काम करवाते हैं, बल्कि अल्लाह ताला अपने किसी बंदे के भी इख्तियार में हवा को दे सकते हैं, जैसे सुलेमान अलैहि सलाम की। जन्नात ना सिर्फ अल्लाह ताला की डायरेक्टली हुक्म किताब है, बल्कि अगर अल्लाह ताला चाहते हैं तो अपने किसी बंदे इंसान के हुक्म के ताबे भी उसको बना सकते हैं, इतना कंप्लीट इख्तियार है। मिसाल के तौर पर आप किसी शख्स को खुद हुक्म दे सकते हैं, वो आपके हुक्म को मान लेगा, लेकिन अगर आप उसको ये हुक्म दें कि अपने भाई के हुक्म को मानो या अपने दोस्त के हुक्म को मानो, वहां वो आपका हुक्म नहीं मानेगा। वो कहेगा भाई मैं आपके हुक्म को तो मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो मेरे बराबर का जो इंसान है ना, मैं उसका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका हुक्म जो है ना, वो इतना ज्यादा उसके ऊपर असर नहीं रखता। डायरेक्टली तो वो मान लेगा आपका हुक्म, लेकिन इनडायरेक्टली मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ना, अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि डायरेक्टली भी हुक्म बनवा सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हुक्म बनवा सकते हैं। ठीक है, चले कोई सवाल अगर नहीं है तो हम क्लास खत्म करते हैं, अगर है तो जल्दी से पूछ लें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।